रविवार 28 जुलाई दिन भर के साथ में निखिल रंजन। प्रधानमंत्री ने की मन की बात, बेटियों की घटती संख्या पर चिंता में मोदी।
हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है, लेकिन इस घटना से मुझे प्रेरणा भी मिली है।
ट्यूनीशिया में चरमपंथी हमले के बाद सैलानियों का लौटना जारी। कुवैत में मरे लोगों में दो भारतीय भी। कुलदीप नैयर ने बीबीसी के साथ किया आपातकाल के दिनों को याद।
मैंने एक चिट्ठी लिखी मिस्टर गांधी, ये डेमोक्रेसी में कैसे फिटन होती है सेंसरशिप, और मैंने उसके बाप का कोटेशन दी, इफ आई हैव टू हैव ए डिसिप्लिन्ड गवर्नमेंट विद डिसिप्लिन्ड प्रेस आई वुड प्रेफर ए लॉलेस गवर्नमेंट एंड लॉ।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे इस बार रक्षाबंधन के पहले गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना का उपहार दें। उन्होंने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि ऐसा करने से करोड़ों महिलाओं को बीमा का फायदा मिलेगा और उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने सेल्फी विद डॉटर हैशटैग की तारीफ की और कहा कि लोग इस पर अपनी बेटी के साथ सेल्फी ट्वीट करें। महाराष्ट्र के पुणे शहर में रविवार सुबह 84 मोटरसाइकिलें और 6 कारें जली हालत में मिली, जिसके बाद से शहर में खलबली मची हुई है। पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर हिरासत में लिया है और जांच अभी जारी है। शहर के सिंगड़ रोड इलाके में ये वारदातें 6 अलग अलग जगहों पर हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज से 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन शुरू हुआ। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय में संस्कृत के लिए एक संयुक्त सचिव का पद गठित करने का फैसला किया गया है। सम्मेलन में भारत के 250 विद्वानों समेत 60 देशों के 600 से ज्यादा विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का समापन 2 जुलाई को होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की समय सीमा 2 दिन बाद समाप्त हो रही है। इस बीच बताया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री मशविरे के लिए तेहरान वापस लौट रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्री जवाद जारिफ देश के नेताओं से इस बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद वो वापस वियना जाएंगे, जहां दुनिया के कई देशों के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत अंतिम दौर में है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति मामलों की प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी का कहना है कि चुनौतियों के बावजूद अंतिम समय तक किसी समझौते की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। यह हमेशा से ही मुश्किल रहा है, लेकिन असंभव नहीं है। दरअसल ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। इस बारे में यदि हम अभी भी आश्वस्त हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कारण हैं। ये सिर्फ कुछ देशों की सुरक्षा से नहीं बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति मामलों की प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में 2 आत्मघाती बम हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। हमलावर महिलाएं एक अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों के रोकने पर उन्होंने खुद को उड़ा लिया। हमले में 16 लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे बोको हराम के चरमपंथियों का हाथ हो सकता है। कुवैत में सरकारी मीडिया का कहना है कि शुक्रवार को शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान एक सऊदी नागरिक के रूप में हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में हमलावर का नाम फहद सुलीमान अब्दुल मोहसिन अल कबा बताया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि मस्जिद पर हमले से कुछ ही देर पहले वो कुवैत आया था। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज 29 जून है, 29 जुलाई नहीं, जैसा कि मैं गलती से शुरुआत में बोल गया था। मैं हूँ, क्षमा कीजिएगा, 28 जून, और मैं हूँ निखिल रंजन, बीबीसी रेडियो और मोबाइल पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात की। उन्होंने इसके लिए लोगों से अपनी बेटी के साथ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को भी कहा। मोदी ने बताया कि उन्हें इसकी प्रेरणा हरियाणा के एक गांव के सरपंच से मिली।
सरकार की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति समाज गांव अपना बना ले तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गाँव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसके स्पर्धा की अपने गांव में। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी, उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है, लेकिन इस घटना से मुझे प्रेरणा भी मिली है और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #selfiewithdaughter जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी मैं रिट्वीट करूंगा।
रेडियो पर मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि एक साल में उनकी सरकार ने अपनी तेज रफ्तार से देश की स्थिति बदल दी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार भले ही दौड़ रही हो लेकिन देश की जनता रेंग रही है। कांग्रेस ने ललित मोदी मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। पूरा ब्यौरा सुनिए वात्सल्य राय से।
कभी कभार कुछ लोगों को लगता है कि मन की बात में मैं सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करूं। जी नहीं, वो तो मैं दिन रात काम करता ही रहता हूं। आपसे तो हल्की फुल्की खटमीठी बातें करता रहूं, बस मुझे इसी में आनंद आता है।
नवी बार रेडियो के जरिए देश से मन की बात कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही कहा हो कि वो इस कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन उनका फोकस अपनी सरकार के कार्यक्रमों की कामयाबी गिनाने पर ही रहा। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हाल में शुरू हुई बीमा और पेंशन योजनाओं की बात की, कचरे से धन बनाने, स्मार्ट सिटी और गरीबों को घर देने के कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी, सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र किया, मानसून के मौसम के बहाने लोगों को पानी बचाने की सीख दी। मोदी ने योग दिवस की कामयाबी का बखान करते हुए ये भी बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने एक साल के अंदर काम करने का अंदाज बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
मैं पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के और नजरिए से भी देखता हूँ। काम करती सरकार, दौड़ती सरकार, एक बार लक्ष्य तय हो तो कैसे परिणाम ला सकती है, ये पिछले दिन हमने देखा है। और जब चारों तरफ निराशा थी, ये हम न भूले कि एक साल पहले चारों तरफ से एक ही स्वर सुनाई देता था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं, सरकार में आयुष एक डिपार्टमेंट है, कभी किसी का उस तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन योगा दिवस को उसने लीड किया।
उधर कांग्रेस ने मन की बात में ललित मोदी मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने मन की बात सुनी, प्रधानमंत्री ने मोदी गेट पर एक शब्द नहीं कहा, बाढ़ पीड़ितों पर कुछ नहीं कहा। पटेल ने सवाल किया कि अटके हुए मन से दिल की बात कैसे निकलेगी। वहीं कांग्रेस के ही नेता गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री को जनता के मन की बात करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद,
बिल्कुल भाग रही है, दौड़ रही है ये सरकार। कभी अमेरिका होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया होती है, कभी जर्मनी होती है, कभी फ्रांस होती है। सरकार तो वाकई भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग रींग रहे हैं। वो भागने चाहें, हिंदुस्तान की जनता को आपके भागने योगा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
6 महीने प्रधानमंत्री बनने से पहले और 1 साल उसके बाद 24 घंटे हमारे कान खा लिए, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दूंगा, पारदर्शिता होगी, बुरे दिन आ गए उन लोगों के लिए जो बुरा करते हैं। ये कौन सी भाषा, आप कहां बदल गए?
कांग्रेस का कहना है कि बदलाव की बात करने वाले मोदी खुद बदल गए हैं, वो भ्रष्टाचार और काला धन पर कुछ नहीं कहना चाहते। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
प्रधानमंत्री मन की बात में बहुत कुछ कह गए लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। आडवाणी ने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया। वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास बहुत लंबे समय से BJP पर करीबी से नजर रख रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त इस बयान का क्या मतलब हो सकता है।
मतलब तो उन्होंने एक आम बात कही है जो जिसका कोई खास निशाना नहीं है, मगर इस माहौल में एक निशाना उनका ये जो वसुंधरा राजे और ललित मोदी का चक्कर जो सारा हादसा चल रहा है, जो ललित गेट के नाम से अब एक तरह से उसको बताया जा रहा है, उसमें सीधा साधा निशाना वही है। आडवाणी अब ये है कि वो अब पार्टी से एक तरह से वरिष्ठ नेता तो हैं, मगर ना उनकी कोई सुनवाई है, ना उनसे कोई पूछता है, तो एक अपनी वो बात कह रहे हैं। बेशक राष्ट्रीय स्वयं सेवक को वो पसंद आए या ना आए, या मोदी को पसंद आए ना आए, वो अपनी बात रख रहे हैं। जैसे अभी कुछ हफ्ता पहले उन्होंने इमरजेंसी की भी बात की थी, तो जब आपातकाल जो थी तो बात जो इंदिरा गांधी 1975 वाली बात, मगर एक निशाना ये भी था कि आजकल जो माहौल हो रहा है मोदी सरकार के जमाने में वो भी एक तरह की इमरजेंसी है, या आगे होकर मोदी एक इमरजेंसी लगा सकते हैं, बेशक उसको इमरजेंसी कहें या ना कहें, मगर एक बात ऐसे सामने आई।
ये आडवाणी जो इस तरह से इशारों में कह रहे हैं, क्या वजह है कि वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि पार्टी में अब उनके दिन मतलब इस तरह के नहीं बचे कि उनको उतने अधिकार के साथ वो अपनी बात कह सकें?
हाँ, उनके मैंने आपसे कहा ना अभी पहले कि ना उनकी कोई सुनवाई है, ना उनसे कोई पूछताछ करता है, और एक तरह से उनको वरिष्ठ नेता के तौर पे एक मार्गदर्शक समिति बनी थी, मगर उसकी ना तो कोई बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी वगैरह को रखा गया था, मगर ना उसकी कोई मीटिंग हुई है, ना उससे कोई उस पर बातचीत हुई है। उनकी उम्र भी हो गई है तो उनको मालूम है कि ना आरएसएस उनको अब कोई कुछ कहेगा, क्योंकि ना उनके पास कोई पद है जिससे उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं। तो एक वो अपना निशाना तो मोदी की सरकार ही निशाना है उनका, ये तो मतलब बात काफी साफ साफ है।
क्या वजह है कि सरकार अपने मंत्रियों या जो नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है, या उनको कम से कम ये तो कहा ही जा सकता था कि जब तक इस बारे में पूरी तरह से मामला साफ नहीं हो जाता तब तक वो पद से हट जाएं?
नहीं, बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि अगर ऐसा होता तो एक तरह से मोदी सरकार के मतलब जो स्टैंडिंग है वो एक उनका कद ऊंचा ही होता, इसमें छोटा नहीं होता, मगर एक उनकी अपनी अजीब सोच है। जैसे राजनाथ सिंह ने अभी हाल में कहा था कि ये इस्तीफा वगैरह ये सिर्फ यूपीए के मिनिस्टर्स देते हैं, हमारे एनडीए के कोई मिनिस्टर्स नहीं देते, मतलब एक बहुत ही अजीब सी बात कह दी थी उन्होंने, इसका मतलब अब कुछ भी हो जाए हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब बहुत ही एक आप एरोगेंस कह लीजिए, एक जो भी कुछ कह लीजिए, घमंड, एक तरह से बहुत ही घमंड है कि पहली दफा मेजोरिटी आ गई उनको लोकसभा में, काफी सालों के बाद किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिली, तो ये समझते हैं कि अब जैसे पूरी जनता हमारे साथ है, मगर मैं नहीं समझती, आहिस्ते आहिस्ते जनता का लगाव भी उतर जाएगा जो बीजेपी के साथ या मोदी के साथ जो एक तरह से नजर आया था 2014 में।
मतलब इस कदम को आप एक राजनीतिक दांवपेच के तौर पर ही देख रही हैं और जिसका नुकसान हो रहा है?
बिल्कुल, आडवाणी भी जो बोल रहे हैं एक राजनीतिक बात ही कर रहे हैं, और आज की स्थिति को देख के सामने रखते हुए ये तो जाहिर है कि उसी की बात कर रहे हैं, मगर वो सीधे साधे नहीं बोलते, ताकि कोई ये नहीं कह सकता कि ये मोदी की आलोचना कर रहे हैं या सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये सीधे साधे कोई ये उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता, मगर बात तो वही बनी, बेशक कोई नाम लिया नहीं लिया मगर वो बात तो वही करते थे।
वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास इस बात का विश्लेषण कर रही थी कि बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी के उस बयान का क्या मतलब है कि सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए, खासतौर से इस वक्त।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
दिनभर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ। ट्यूनिशिया में चरमपंथी हमले के शिकार हुए लोगों को आज श्रद्धांजलि दी गई। ट्यूनिशिया के सूजे रिसोर्ट में सैकड़ों लोग जमा हुए और उस हमले की निंदा की जिसमें छुट्टी मना रहे सैलानी मारे गए। यहां आए लोगों ने सड़कों पर मार्च किया और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताई और नारे लगाए। यहां एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोली चलाकर 82 लोगों की जान ले ली। इसके बाद से यहां से बड़ी संख्या में सैलानी वापस लौट गए हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि कुवैत की मस्जिद में चरमपंथी हमले में मारे गए लोगों में 2 भारतीय भी हैं, इनमें एक हैं रिजवान हुसैन और दूसरे इब्ने अब्बास। मस्जिद में गार्ड के रूप में काम करने वाले रिजवान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के हैं, जबकि अब्बास का ताल्लुक अम्बेडकर नगर के जलालपुर से है और वो वहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। मस्जिद पर नमाज के दौरान आत्मघाती हमले में कुल 27 लोग मारे गए थे, इनमें से ये दोनों भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं आपातकाल की। आज दिनभर संडे में हम आपकी खास मुलाकात करा रहे हैं कुलदीप नैयर से। 40 साल पहले भारत ने आपातकाल की आंधी का सामना किया था, जिन लोगों ने उस दौर को देखा उनके जहन पर ऐसी अमिट छाप बन गई कि चार दशक लंबे वक्त की धारा भी उस पर कोई असर नहीं डाल सकी है। ये ज़रूर है कि भारत में वैसा कुछ दोबारा नहीं हुआ और भारतीय लोकतंत्र उस आपातकाल की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद शायद और भी मजबूत हुई है, लेकिन आपातकाल तो आपातकाल ही है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भारत में आपातकाल को झेलने वाले पत्रकारों में हैं। हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने उनसे बात कर उस दौर के बारे में सवाल किया।
इंदिरा गांधी ने स्पीच दी ऑल इंडिया रेडियो पर और अनाउंस किया कि भाई अब इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के पहले दिन क्या हुआ?
मुझे याद है कि भाई न्यू स्टेट्समैन का यहाँ एक कॉरेस्पॉन्डेंट आया हुआ था, तो इमरजेंसी के एग्जैक्टली 24 आवर्स अर्लियर मैं एक्सप्रेस में था, तो एक्सप्रेस में आया, वो कहने लगा सुना है, मुझे अफवाह चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो सकता है, प्रेस सेंसरशिप लग सकती है। तो मैंने उसे कहा देखिए कि ये चीज़ें आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से अफ्रीका से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो एक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र राज है, जो पार्लियामेंट में होगा अब उससे होगा, और ये जो आप सुनते हैं सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में नहीं हो सकता। अब 24 घंटे के बाद जब लग गई तो मेरे पास आया, कहने लगा इसे हाउ डू यू एक्सप्लेन, आई सेड आई विश आई कुड एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। उस वक्त मुझे भी बहुत हैरानगी ये हुई, आम आदमी भी वगैरह अब डरते थे, ये खौफ जो था ये था। एमरजेंसी ख़त्म हुई तो मैंने अपनी किताब लिख रहा था जजमेंट, तो उसको मैंने संजय गांधी को इंटरव्यू किया।
वही मैं जानना चाहता हूँ, संजय गांधी से जब आपने इंटरव्यू किया तो वो उन्होंने इमरजेंसी को कैसे डिफेंड किया?
मैंने कहा कि संजय गांधी टेल मी हाउ डिड यू थिंक यू विल गेट अवे विद इट, ही सेड व्हाट वाज द प्रॉब्लम। बंसीलाल वो हरियाणा का तो चीफ मिनिस्टर था, उसको उसने एक डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। बंसीलाल से मैंने मिलके हुकूमत की, इन माय स्कीम ऑफ थिंग्स ही सेड अगले 30 साल में कोई इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। तो मैंने कहा फिर किया क्यों, कहता उसको पूछो, वो मिस गांधी उस वक्त बरामदे में खड़ी थी, कहता उसको पूछो। मैं तो बहुत खिलाफ था इसके। अब मिसेस गांधी की ये प्रॉब्लम थी कि मिसेस गांधी जो रिकग्निशन थी वो मानती थी वेस्ट से, पढ़ी लिखी इधर ही उसकी सहेलियाँ वगैरह, जो ईस्ट था सोवियत यूनियन उसका क्या फ़ायदा, वो तो पास ही था। मुझे याद है पीएन धर उसका सेक्रेटरी हुआ करता था, तो मैंने उससे पूछा भी कि भई ये, वो कहता है कि उसको बड़ी अनकंफर्टेबल थी कि भई ये जो देखो मैं मिसेस थैचर से बात किया है वो भी बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही हैं वेस्ट में, सब अखबार सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सबके, और न सिर्फ वो बल्कि वो इसको ऑटोक्रेटिक और क्या क्या, तो शी कुडंट स्टैंड, वो कहती है कि तो इसलिए शी वॉज राइटिंग ए टाइगर, सो शी वॉन्टेड टू डिसमाउंट इट। सो जब मौका आया, अब यहाँ पे जब इलेक्शन करने से पहले इसमें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक पार्ट किया, अब पर्पजली किया या उनकी भी गलती, उनका ख्याल था, उन्होंने इसको कहा कि यू विल विन हैंड्स डाउन,
वो गलत हो गया,
वो गलत था। अब या उन्होंने उनकी अपनी भी गलती थी उनकी असेसमेंट में, या किसी ने जान के ये कहना, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि वो उसने, और शी वॉज मतलब देवर श्योर दे विल कम बैक। हम वो बाहर लगा रहे थे कि भाई कौन जीता वगैरह, ये आया मेरे सामने कि भाई मिसेस गांधी हार गई है। मैंने कहा मैं तो नहीं मानता, मैंने उसको रायबरेली में फ़ोन किया कॉरेस्पॉन्डेंट को, कहता जी 3 दफ़ा काउंट हुआ है तो हार रही है, कहता पहले वो डिक्लेरेशन नहीं करना चाहते थे उसने, लेकिन वो जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो बहुत इंडिपेंडेंट था, बट अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट उसकी जो बीवी थी वो बीवी के पास गया, वो कहता जब ये पता चला मुझे कि हार रही है, उस वक्त ये तो पता नहीं कि सारे देश में हार जाएगी, कहता मेरे लिए बहुत संकट था। तो मैं आया तो उसकी बीवी गुजरात से थी, कहने लगा भी देखो ये है तुम बताओ क्या करें, कहती है देखो तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं बर्तन मांझ लूँगी लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, जो है वो करो। उसने आकर डिक्लेयर किया। तभी
संजय गांधी का इस पूरे इमरजेंसी में क्या रोल आप एसेस करते हैं?
देखिए इमरजेंसी जब लग गई दैट मीन्स कि आपने फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए, और कौन, तो ये जो मिसेस गांधी का अपना दिमाग नहीं था, Mrs. Gandhi was thinking to step down. और जगजीवन राम को बनाए या त्रिपाठी थे ना जो अपने यूपी के वो आए थे वो
कमलापति
कमलापति कभी वो रिलायबल ताकि मैं उसके बाद जब ये संजय गांधी को पता चला कि भाई ये है तो वो ही स्टेप्ड इन ही प्रिवेल्ड अपॉन हर कि भाई नहीं ये नहीं तो जब संजय गांधी ने प्रिवेल किया संजय तो अब संजय गांधी हुकूमत था ही वॉज द पर्सन संजय गांधी एन आर के धवन और उसका एक सेक्रेटरी जो था तो ये दोनों मिलके हुकूमत चलाते थे बंसीलाल वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर था उसको यहाँ पे ले आए डिफेंस मिनिस्टर तो यही तो तभी मैंने कहा ना कि मैंने जब संजय गांधी को कहा किताब ने जब लिखा कि हाउ डिड यू थिंक यू वुड गेट अवे देन ही सेड कौन रोकता था कुछ नहीं था सब कुछ था ये तो मिसेस गांधी ने किया लेकिन वो और बंसीलाल जो वो हरियाणा का था और डिफेंस मिनिस्टर ये मिलके देवर द गवर्नमेंट लेकिन ये जो असली बात है कि गवर्नमेंट में भी इतना डर अफसर में डर जो नीचे था उसमें डर कि भाई क्या होने वाला है जो खौफ था ना उसी की वजह से ये इमरजेंसी आप जो कहते हैं गवर्नमेंट 2.5 साल चली
एक चीज़ और बताइए कि संजय गांधी का अपना रोल था सब कुछ हो गया किस तरह से जब सारे नेताओं को पकड़ पकड़ के ले गए तो किस तरह से वो घटना कैसे हुई
देखिए कि अब जब फैसला उन्होंने किया तो एक शाम पहले ही उन्होंने सबको उठा लिया मतलब रात को और जयप्रकाश नारायण जहाँ गांधी पीस फाउंडेशन में रहते थे उसको भी उठा दिया पर मैं अपनी मिसाल से देखता हूँ कि भई अखबार में लिखना जब कुछ कोई बात नहीं तो जब मुझे पकड़ लिया जेल में तो मैंने बाद में पूछा आर के धवन से मैंने कहा भाई मुझे मेरा क्या मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था लिखता था वगैरह कहता नहीं संजय ने कहा कि भई जर्नलिस्ट का कुछ करें तो लेट्स पिक अप द टॉलेस्ट अब हाइट में तो टाल हूँ लेकिन उस वक्त नाम वाम भी था वगैरह तो कहता है बस तुम्हारा यही था रिपोर्ट क्या बनाई जो FIR मैंने देखा बाद में वो ये थी कि ये जामा मस्जिद में जाके मुसलमानों को उकसा रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ
ऐसा कभी हुआ था
सब गया ही नहीं कभी शायद एक दफ़ा मुझे शाही इमाम ने लंच पे बुलाया था गया होगा बस दैट्स ऑल नथिंग
वो जो टाइम पीरियड आपने जेल में बिताया वो कैसा था
एक अखबार जो है मेन स्ट्रीम तो उसके एडिटर ने मुझे कहा कि देखो मैंने सुना है अपने जरिए से कि तुम्हारे घर छापा पड़ेगा तो तुम पेपर वेपर इधर निखिल चक्रवर्ती था पेपर थे इधर उधर के इकट्ठे किए वो अखबार में लिखता ही था कुछ होम मिनिस्ट्री के भी कोई डॉक्यूमेंट्स रखे थे तो मैंने अपने लड़के को दे दिए जब सुबह वो आए पुलिस वाले तो मैंने कहा आप देख लीजिए घर आपको सर्च कर जी नहीं वी हैवंट कम टू सर्च द हाउस वी हैव कम टू अरेस्ट यू तो मैंने कहा दिखाओ तो सही तो उसमें वारंट्स ऑफ अरेस्ट तो मैंने मतलब सोचा था मैंने कहा मुझे आम का बहुत शौक है उन दिनों में आम बहुत थे अच्छे लंगड़ा था तो मैंने फ्रिज से 2 आम निकाले तो 2 आम खाए मैंने कहा ये तो आम मिलेंगे नहीं तो वह अब वहाँ पर जब पहुँचा ये जनसंघ के सारे लोग लीडर सब कैद थे तो वो इज्जत करते थे बहुत ठीक है लेकिन खाने का ये हिसाब था कि अब जब लंच आया तो उसमें तो मक्खियाँ तैर रही थी वो दाल थी उसमें मक्खियाँ थी और एक रोटी थी और तो मैं तो खा नहीं सका तो मेरे पास एक बैठा हुआ था आदमी वो उस हलवाई था वो जो कश्मीरी गेट में उसकी दुकान थी वो मेरे वो कहता है नहीं साहब खाना तो यही करना पड़ेगा तो मेरे पास नींबू का अचार है आप नींबू का अचार खा लेना सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो गया कि जब मक्खियाँ दाल में पड़ती थी तो निकाल के खा जाता था सो यूज टू इट जो बैरक में रखा जहाँ पे 28 आदमी थे मुझे याद है और एक पंखा था पहले दिन नींद नहीं आई दूसरे दिन नींद आ गई फिर नींद कोई
आदत हो गई था
आदत हो गई
ये कौन सी जेल थी तिहाड़
तिहाड़ जेल
और ये इमरजेंसी लगने के कितने दिन बाद आप
इमरजेंसी के बाद किसी ने आके कहा वो गए हुए थे मिसेस गांधी को मिलने इमरजेंसी के बाद तो कहती है मिसेस गांधी ने कहा नॉट ए डॉग हैज़ बार्क ये बड़ी बड़ी अखबारों के जो एडिटर हैं बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम नहीं लिया लेकिन उसका इशारा तुम्हारी था। अब ये जो कि नॉट ए डॉग हैज बार्क्ड, ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं गया अखबारों के दफ्तर में, एजेंसी में, मैंने कहा भाई कल सब लोग वहाँ पर प्रेस क्लब में मिलेंगे। आई वॉज सरप्राइज कि वहाँ पर बाद में जो लिस्ट देखी 103 जर्नलिस्ट थे जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट सब। तो मैंने रेजोल्यूशन पास किया, मैंने कहा देखो भाई मैं रेजोल्यूशन तुम्हें लिखता हूँ कि वी कंडेम द प्रेस सेंसरशिप एंड वी वांट द गवर्नमेंट टू बिकॉज दिस डजंट गेट। अब उसके साथ मैंने एक चिट्ठी लिखी मिस्टर गांधी को, मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी में कैसे फिट इन होती है सेंसरशिप। और मैंने उसके बाप का जवाहरलाल नेहरू की एक कोटेशन दी, उसने कहा था If I have to have a disciplined government with disciplined press, I would prefer a lawless government and law. तो वी सी शुक्ला हुआ करता था इन्फॉर्मेशन में,
विद्याचरण शुक्ला।
हाँ, तो ये मेरा वैसे दोस्त था उस वक्त, मिनिस्टर ऑफ प्रोटेक्शन था डिफेंस पहले, फिर बाद में आया वहाँ पर। तो उसने कहा कि कुलदीप कभी मिलो तो सही ना। मैं कहा यार तुम अब इतने बड़े आदमी हो गए हो, कहता नहीं। और वो लेते आना चिट्ठी, वो लव लेटर, उसने लव लेटर कहा जिसमें वो लिस्ट है। मैं गया तो मैंने कहा कि देखो वो जो नाम है वो तो तुम्हें मिल नहीं सकते, वो तो ठीक है वो पड़े हैं कहीं, तो ये बताओ कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। कहते कुलदीप देखो अब ये गवर्नमेंट बदल गई है, अब गवर्नमेंट संजय गांधी, इसलिए तुम सोच लो कि तुम्हें भी कैद कर सकते हैं। मैंने कहा भाई कैद करना तो कैद कर लो, मतलब बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड इट नेवर इवन क्रॉस माय माइंड जब मैंने वो चिट्ठी भी लिखी कि भाई कैद कर सकते हैं वगैरह, नहीं। तो ये अब मतलब उसने कहा तो देन आई थॉट कि भाई मे बी समडे दे माइट। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो फ्लश सिस्टम, तो फ्लश सिस्टम तो था ही नहीं वहाँ पर। हमारा दोस्त था उस वक्त गिरिलाल जैन, एक एडिटर थे, तो ये गिरिलाल जैन ने कहा कुलदीप ये बताओ कि जो लेटरेंस हैं वो क्या है। मैंने कहा वो तो ड्राई हैं। कहता है अरे ये क्या हो, क्योंकि फ्लश से हम यूज होते हैं जेल इतनी गंदी। तो मैंने जब ये ओम ओम कुछ नाम मुझे भूल रहा है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था, तो मैंने कहा यार इतनी जेलें गंदी क्यों हैं। तो कहने लगा नैयर साहब आपको हमने अशोका होटल में थोड़ा भेजा था। मैंने कहा भाई जेलें गंदी तो ना रखो वगैरह, तो खैर नहीं दैट वाज।
वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर याद कर रहे थे आपातकाल के उन काले दिनों को जब देश में इमरजेंसी थी। हमारे सहयोगी मोहनलाल उनसे बात कर रहे थे। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके प्रतिक्रियाओं का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अब चलते चलते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे इस बार रक्षाबंधन के पहले गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा का उपहार दें। उन्होंने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ये बातें कही हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में रविवार सुबह 84 मोटरसाइकिलें और 6 कारें जली हालत में मिलीं, जिसके बाद से शहर में खलबली मची है। पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज से 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन शुरू हुआ। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मौके पर कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय में संस्कृत के लिए एक संयुक्त सचिव का पद गठित करने का फैसला किया गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की समय सीमा 2 दिन बाद समाप्त हो रही है। इस बीच बताया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री मशविरे के लिए तेहरान वापस लौट रहे हैं। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में 2 आत्मघाती बम हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। हमलावर महिलाएं एक अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश कर रही थीं लेकिन सुरक्षाकर्मियों के रोकने पर उन्होंने खुद को उड़ा लिया। हमले में 16 लोगों के घायल होने की भी खबर है। कुवैत में सरकारी मीडिया का कहना है कि शुक्रवार को शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान एक सऊदी नागरिक के रूप में हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मस्जिद पर हमले से कुछ ही देर पहले वो व्यक्ति कुवैत आया था। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। आज के दिन भर में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 9:30 बजे घटना चक्र में। आज स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने। पूरी टीम के साथ निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।